Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Pratham Skand, Panchama Adhyay, Shloka Sankhya 21. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne ke liye Guru aur Gauranga se Kripa ki yachna karte hue Mangala Charan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain uska pura pura labh prapt ho sake, jo ki hai कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदी साङ्गपत् कमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वितो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णम् भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला सिकंद पांचवा अध्याय श्लोक क्रमांक 21। श्री नारद जी के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। आज नारद ने वेद व्यासी को उनके विषय में बता रहे हैं कि वास्तव में आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि भगवान की शक्ति आवेश अवतार हो, और आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप जीवों को भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के विषय में बताओ, उनके विषय में वर्णन करो, यही आपका कार्य है। तो कहते हैं नारद मुनि वेद व्यास जी को,
त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोधि परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगत शिवायतम् महानुभावा व्युदयोधिकर्यताम्। त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोधि परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजः अजम् प्रजातम् जगत शिवायतम् महानुभावा व्युदयोधिगयतम्। त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोधिक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगत शिवायतम् महानुभावा व्युदयोधिगम्यताम्। त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोद्रिक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगत शिवायतम् महानुभावा व्युदयोधिगम्यताम्। त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोधिक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजम् प्रजातम् जगत शिवायतम् महानुभावा व्युदयोधिगम्यताम्।
शब्दों का अर्थ त्वम् आत्मानात्मनः अर्थात त्वम् का मतलब होता है तुम। नारद मुनि वेद व्यास जी को कहते हैं तुम आत्मना यानी अपने आप से आत्मानम यानी भगवान को अवेह्य ढूंढो। यानी नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान के विषय में आप जान सकते हो, क्यों जान सकते हो, परस्य पुंसा, परस्य का मतलब होता है अमोघ दृक् का मतलब होता है पूर्ण दृष्टि वाला। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप पूर्ण दृष्टि वाले हो, आप जान सकते हो, भगवान को समझ सकते हो। और परस्य पुंसः, परस्य का मतलब होता है आध्यात्मिक का, पुंसः मतलब भगवान।
तो आप परम पुरुष भगवान जो कि बिल्कुल आध्यात्मिक है, परमात्मनः कला, आप उन्हीं के परमात्मनः यानी परमात्मा की कला यानी अंश, आप क्योंकि उन्हीं भगवान के अंश हो इसलिए आप कोई साधारण नहीं हो, आप अमोघ देक्ष हो। अमोघ का मतलब होता है जिसकी दृष्टि से, जैसे हमारी जो साधारण दृष्टि होती है ना उससे हम गलती कर बैठते हैं कि दूर से देखते हैं सूर्य को और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य छोटा होगा, लेकिन अमोघ दृष्टि का मतलब होता है जिसकी दृष्टि पूर्ण हो, वो कभी भी हमारी तरह उसकी इंद्रियां अपूर्ण नहीं होती है, पूर्ण होती है। तो और क्यों? क्योंकि वो परमात्मनः कलाम, वो भगवान के अंश है। अजम अजन्मा, प्रजातम यानी जन्म लिया गया। अब आप अजन्मा हो, भगवान की कला हो और आप अजन्मा हो, अजन्मा हो तो फिर जन्म कैसे लिया? तो यहाँ पर बता रहे हैं जन्म लिया गया है जगत विषय, जगत शिवाय। जगत का मतलब होता है यह संसार, शिवाय का मतलब होता है कल्याण के लिए। वैसे तो आप अजन्मा हो, भगवान के अंश हो, आपकी दृष्टि भी अमोघ है और आप इस संसार में आए क्यों हो? जगत शिवाय, जग भगवान संसार का कल्याण करने के लिए। तत् उस महानुभाव भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को महानुभाव कहकर पुकारा है नारद मुनि ने और कहा अभ्युदया, अभ्युदया यानी उनकी, वो भगवान है वो महानुभाव है, अर्थात वो जो लीला करते हैं कोई साधारण लोग की तरह नहीं होती है, उनकी लीलाएं बहुत ही महान होती हैं। और उनकी महानता सबसे बड़ी क्या है कि उनके विषय में जो श्रवण करता है उनका कल्याण होता है, उनको जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। बाकी जो भी संसार में जो भी कहानियां होती हैं, जिसके विषय में बात होती है, उसको सुनकर हम थोड़े समय के लिए आनंदित हो सकते हैं लेकिन हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होगा। लेकिन भगवान की लीलाएं जो हैं, उनको श्रवण करके सबका कल्याण होगा। तो उसको, ऐसे भगवान को महानुभावान कहते हैं क्योंकि अभ्युदया, उनकी लीलाएं जो है अधिगण्यता, उनका विस्तार से बयान करो, उनको सब विस्तार से बताओ। अधिगण्यता का मतलब होता है डिटेल से, आपने उसी भगवान के विषय में बताया है वेदों के वेदों में, लेकिन क्योंकि आप अमोघ दृक् हैं, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के विषय में बताइए ताकि लोग का कल्याण हो। क्योंकि आप अजन्मा हैं और आपका जन्म इस संसार में इसीलिए हुआ है कि जगत शिवाय, लोगों को कल्याण करने के लिए। तो लोग का वास्तविक कल्याण किसमें होगा? भगवान के विषय में श्रवण करके। जब हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी और भौतिक आसक्ति समाप्त होगी तभी तो कल्याण होगा। तो आप उसी के विषय में बताइए। अनुवाद, तुम पूर्ण दृष्टि हो, तुम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश स्वरूप हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रील वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां विच अवतार है, वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहितु की कृपावश अवतरित हुए हैं। यहाँ पे बताया ना, परस्य पुंसाम परमात्मनः कलाम, के वो जो हैं भगवान उनकी अंश हैं। अजम प्रजातम जगत शिवाय, वास्तव में अजन्मा है लेकिन जगत के कल्याण के लिए अहितु की कृपावश यहाँ पर अवतरित हुए हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विच्छिन्न रहते हैं। अब जीव की ये हर जीव के अंदर ये अवगुण है कि वो विस्मृति का शिकार हो जाता है, यानी वास्तव में जीव का ज्ञानमय है, जैसे भगवान सच्चिदानंद चित्त है उसी तरह से जीव भी चित्त, उसको भी पूरा ज्ञान है लेकिन वो जब संसार में आता है तो फिर अज्ञानता के कारण, इस संसार के मोह के कारण, बहिरंगा शक्ति के चुंगल में फंसने के कारण उसको वास्तविक ज्ञान क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इस बात को भूल जाता है। तो फिर यहाँ पर वेदव्यास जी का अवतार हुआ, क्योंकि जब भगवान ने देखा कि जीव अज्ञानता के कारण मुझे भूल गया तो फिर क्या होगा, जीव का कभी भी उद्धार नहीं होगा। तो शास्त्र कहता है माया मुक्त जीवे नहीं सदा श्रुति ज्ञान, माया मुक्त जीवे नहीं सदा स्मृति ज्ञान, जीवे रे कृपाए कलो कृष्ण वे पुराण। के जब देखा कि माया से मुग्ध होकर जीव भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहा है तो उनके ऊपर कृपा करने के कारण वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, वेद पुराण शास्त्र लिखे। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि उन्हें कह रहे हैं कि क्योंकि आप अमोघद्रिक हैं तो फिर आप डायरेक्ट से महानुभावाभ्युदयोदिगणया, यानी कि जो भगवान है उनकी अभ्युदय उनकी लीलाओं के विषय में डायरेक्ट से आप लिखो, क्योंकि लोग इतने सारे वेद शास्त्रों में जो सार है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आप क्या करो डायरेक्ट से सार निकाल के दे दो। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके नित्य सेवक हैं, अतिव सारा वैदिक साहित्य उन्हें पतित जीवों के लाभ हेतु व्यवस्थित किया गया है। अब संसार में सारे जीव भगवान के सेवक हैं, तो जितने भी शास्त्र बताए जाते हैं, शास्त्रों में जो कुछ भी बताया जाता है वास्तव में जीवों के लाभ हेतु ही बताया जाता है कि इससे उनका कल्याण होगा और वो धीरे धीरे प्रगति करके भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भाव बंधन से अपने को मुक्त करें। श्रीला प्रभुपाद जी हम जैसे पतित जीवों के लिए आदेश दे रहे हैं कि क्योंकि ये वैदिक साहित्य क्यों लिखा है वेद व्यास जी ने, हमारे कल्याण के लिए लिखा है, तो ऐसे फिर इनको पढ़ना चाहिए, इनसे लाभ उठाना चाहिए, शास्त्रों से श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम और अन्य जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़कर हमें समझना चाहिए कि इसमें वास्तविक कल्याण के विषय में बताया गया है। तो फिर हमें अभी कोई बोले, जैसे किसी को हम बोलेंगे भी भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो फिर वो बोलेंगे हमें क्या खबर कि कौन भगवान है, हमारे खानदान वाले तो इसी की भक्ति कर रहे हैं, जिसके बारे में भी बोले वो पीर हो कोई पैगंबर हो कोई है ना देवी देवता हो, तो भाई हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप कैसे फॉलो कर सकते हो, ये शास्त्र भगवान ने आपके लिए दिए हैं, आपको मनुष्य बनाया है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इन शास्त्रों को पढ़ो, भले किसी को फॉलो नहीं करो लेकिन शास्त्र तो पढ़ के आपको ऐसे अंधा विश्वास किसी के ऊपर कैसे कर सकते हो। भगवद गीता साक्षात भगवान की वाणी, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई भी पूजनीय नहीं है, बाकी सब मेरे सेवक हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं समस्त लोगों का प्रभु हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम, मैंने ही सब कुछ को उद्भूत किया है, इस यही जानकर तुम मेरी भक्ति करो। और भगवान कहते हैं मत्तः परतरस नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जो कुछ भी संसार में है वो मुझ पर टिका हुआ। तो ये सारा शास्त्र भगवान कोई अपनी पब्लिसिटी करने के लिए नहीं बल्कि जीवों का कल्याण करने के लिए बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पतित जीवों को इनसे लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए इन सहायतों का लाभ उठाकर, ताकि वो भाव बंधन से अपने आप को मुक्त करे। यदि भी श्री नारद श्री वेद व्यास जी के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन वे गुरु पर पूर्णतया निर्भर नहीं है क्योंकि वे मूलतः अन्य सबों के गुरु हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी के विषय में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि नारद मुनि को वेद व्यास जी के गुरु के विषय में बताया, गुरु के तौर पर बताया गया, वास्तव में औपचारिक रूप से यानी अतक्रम आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तो औपचारिक रूप से तो उनके गुरु है, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान की शक्तियां अवतार है। उन्हें गुरु करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि अमोघद्रिक, वो अमोघद्रिक है, उनकी दृष्टि संपूर्ण है, और परमात्मना कला, वो भगवान के अंश है, तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है निर्देशन देने के लिए, वो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे मूर्ख व्यक्ति जो अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं कि किसी गुरु के निर्देशन के अतिरिक्त ही अपना कोई धर्म, अपना कोई भक्ति का तरीका अपना कर सोचते हैं कि ये तरीका सही है। लेकिन यहाँ पर भगवान के विषय में, जो कि भगवान की शक्ति आवेश अवतार है वेद व्यासी, उनके विषय में बताया जा रहा है कि वो भी अपने गुरु के आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। तो हम जैसे मूर्ख पतित लोग अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो वो कभी भी परफेक्ट कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो वास्तव में, यहाँ पर तो औपचारिक रूप से उनको गुरु दिखाया जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में सबों के गुरु हैं, क्योंकि जितने भी वेद शास्त्र हैं वो वेद व्यास जी ने बताए हैं, और हम सब इंद्रियी वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं क्योंकि उन्हीं के साहित्य को पढ़ते हैं, और श्री प्रभुपाद जी उन्हीं के शास्त्रों को हमें विस्तार से तात्पर्य के साथ बताते हैं। तो वो सब हम सबके वेद व्यास जी हम सबके गुरु हुए, चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। अब वो आचार्य है, आचार्य का मतलब होता है जो जो बोलता है वो अपने आचरण में करके दिखाए। तो वेद व्यास जी अगर हमें सबको बोलेंगे कि सबको आपको गुरु करना चाहिए, लेकिन वो खुद अगर गुरु नहीं करेंगे तो आचार्य तो नहीं हुए ना। जो कहता है, गुरु का मतलब है कि जो वो कहे वैसा ही आचरण करे। तो यहाँ पर वेद व्यास जी ने इसीलिए गुरु को स्वीकार किया है, भले ही वो सक्षम है। तो यहाँ पर तो श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वो साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। अगर वो भगवान स्वयं भी संसार में आते हैं तो भी उन्हें गुरु बनाना चाहिए। और भगवान ने ऐसी अनेक ना एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, सभी ने भगवान के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आधार थे। अब भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को और चैतन्य महाप्रभु को गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो समस्त ज्ञान के आधार है, समस्त ज्ञान उनसे ही उद्भूत हुआ है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, भगवान कहते हैं समस्त वेदों का रचयिता मैं हूँ, समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूँ, समस्त वेदों के द्वारा जानने के योग्य मैं हूँ। लेकिन फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण संसार में आते हैं तो संदीपनी मुनि से शिक्षा लेते हैं, भगवान श्री राम जब इस संसार में आते हैं तो विशिष्ट जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो ईश्वरपुरी जी को गुरु बनाते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये संसार को दिखाने के लिए कि गुरु करना आवश्यक है। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यास देव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे।
श्री गुरुं दीन तारणम।
अत्यंत सुंदर रीति से महारत मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि क्योंकि आप संपूर्ण हैं, आपकी दृष्टि संपूर्ण है, आप भगवान के अंश हैं, तो आप सदैव सही कार्य करोगे और जो भगवान की लीलाओं के विषय में आप विस्तार से करो, क्योंकि आपका जन्म आपका जन्म है, लेकिन फिर भी आपका जन्म हुआ है क्यों? जीव कल्याण के लिए। तो वास्तव में जीव का कल्याण इसी में है कि वो भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण करे। जैसे बताया कि महानुभावात युदयोदि गणयात, कि भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं उनके विषय में बताओ, क्योंकि जीव का कल्याण उसी से होगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि वेद व्यास जी अमोघ दृक् हैं और उनका जीवन उनका संसार में आने का कारण क्या है कि वो शिवाय जगत शिवाय कि जीवों के कल्याण के लिए आए हैं, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट से क्यों नहीं किया इसमें? जब उनकी शक्ति वो भगवान की शक्ति हमेशा उतार है, उनकी दृष्टि में कोई दोष नहीं है, पूर्ण दृष्टि है, तो डायरेक्ट से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों लिखा? काम का इतने सारे वेद लिखे, डायरेक्ट से भगवान की लीलाओं के विषय में बता दे, क्योंकि जीवों का कल्याण तो उन्हीं के श्रवण करने से होता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे नारद मुनि कि इसलिए क्योंकि अब नारद मुनि वेद व्यास जी के गुरु हैं, वो दिखाना चाहते थे कि जब तक मैंने गुरु के आदेश का पालन करके अपनी मति से कुछ किया तो उससे मैं वो संपूर्ण पूर्ण कार्य नहीं कर सका जिससे वास्तविक कल्याण हो। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति भी यदि गुरु महाराज के आदेशानुसार कार्य करेंगे तभी जीवन की परफेक्शन को प्राप्त होंगे। और दूसरा ये यहाँ पर बताना चाह रहे कि यदि एक ही यही बात लिख लेती भगवान के विषय में तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस कम होती। अब इतना सारा नारद मुनि जब उनको बता रहे हैं उनके गुरु के, अभी ये जो लीला है ऐसा नहीं है कि वेद व्यास को ये सब पता नहीं है कि जीवों का कल्याण किसमें है या फिर उनको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सबों के गुरु हैं, वो भगवान की शक्तियां विश अवतार हैं, लेकिन वो इतना सब लिखकर बताना चाहते थे कि इतना सब मैंने लिखा है लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं आ रहा है जब तक मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन करके भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया तब तक मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है वो जीवों को ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक अगर किसी को आनंद चाहिए, किसी को संतुष्टि चाहिए, किसी को परफेक्शन चाहिए, तो उसका एक ही लक्ष्य है, उसको एक ही कार्य करना चाहिए कि भगवान को डायरेक्ट से जो भगवान है उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना चाहिए, उसी से उसका कल्याण होगा। और नारद मुनि जो कि अभी वेद व्यास जी के गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, वो इसी बात को ऑथेंटिक रूप से प्रामाणिक रूप से बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में जीव का कल्याण कभी भी भौतिक इंद्र तृप्ति से नहीं होगा, कभी भी धर्म अर्थ काम इत्यादि में उलझने से नहीं होगा, कभी भी संसार इस संसार में कोई भी उन्नति प्राप्त करने से जीव का कल्याण नहीं होगा जब तक कि वो भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण नहीं करता है, जब तक कि वो भगवान से अपने प्रेम के संबंध को निर्माण नहीं करता है। आगे नारद मुनि कहते हैं श्लोक नंबर 22, कृपया मेरे साथ रिसाइट कीजिए। नारद मुनि कह रहे हैं इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा विशिष्टस्य सूक्तस्य च बुधित्ततयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दतायो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत तम श्लोक गुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसः तपसः
श्रुतस्य वा विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यत् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्
शब्दों का अर्थ इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा इदं मतलब यह ही माना निश्चय ही प्रत्येक पुंसः मतलब प्रत्येक व्यक्ति हर कोई व्यक्ति तपसः अथवा तपस्या के द्वारा श्रुतस्य अथवा वेदों के अध्ययन से वा अथवा विष्टस्य यज्ञ का सूक्तस्य आध्यात्मिक शिक्षा का च तथा बुद्धि अर्थात ज्ञान का अनुशीलन दत्तयो अर्थात दान अविच्युत अर्थात अचूक अर्थ यानी प्रयोजन कवि भी अर्थात मानव विद्वान द्वारा मान्य विद्वान द्वारा निरूपित निष्कर्ष रूप से प्राप्त किया गया वर्णित यत जो उत्तम श्लोक अर्थात भगवान जिनका वर्णन चुने हुए श्लोकों के द्वारा पद्य से किया जाता है गुणानुवर्णनम यानी दिव्य गुणों का वर्णन अनुवाद विद्वन मंजिली ने यह निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या वेदाध्ययन यज्ञ दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन यानी उद्देश्य उत्तम श्लोक यानी भगवान की दिव्य लीलाओं में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला विज्ञान दर्शन भौतिकी रसायन मनोविज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि मनुष्य को जो अक्ल है ना दिमाग जो जहानत मिली है यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो क्या करने के लिए कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है। क्या ज्ञान प्राप्त करना है कि जो ये फिलोसफी है केमिस्ट्री है फिजिक्स है साइकोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है पॉलिटिक्स है इसमें जीव को बुद्धि को अपने यूज करना है और इसके लिए ही इन सारी चीजों को सीखने के लिए ही मस्तिष्क का विकास हुआ है। और जब इन सब के विषय में जीव जान लेगा तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। आगे जब बढ़ेगा तो उसे क्या पता चलेगा कि जो कुछ भी है वो आया किधर से उसका सोर्स क्या है तो फिर वो कहाँ पे जाएगा भगवान तक उसकी सोच जाएगी। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष यानी विष्णु की प्राप्ति में होता है। कि जीव भले किसी भी फील्ड में सोचेगा, अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा तो, अगर कोई है ना इस संसार के, जैसे अगर कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर इस संसार की भौतिक वस्तुओं के विषय में सोचेगा, कोई अगर एक फूल के विषय में भी सोचेगा कि ये फ्लावर है, इसको बीज से हमने जमीन पे डाला बीज और उससे वो उग कर ये फ्लावर बन गया, तो फिर वो बीज कहाँ से आया? तो वास्तविक बीज को क्या है, भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदक्षिता, मैं बीज हूँ। तो ये जो पूरा ज्ञान है वास्तव में पूर्णता जो है, अंत जो है, वो परम पुरुष भगवान तक लेकर आता है। यदि कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर उसे यही समझ में आएगा कि जो कुछ भी है सर्व इदम खलम ब्रह्म, जो कुछ भी है भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान का ही स्वरूप है और भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही अंश है। तो पूर्णता किसमें होती है? ज्ञान की, भगवान की प्राप्ति में होती है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रुति का निर्देश है कि जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा किस तरह करनी चाहिए। अब जिन जो ज्ञान हासिल कर लेते हैं, जो ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान में बहुत अधिक आगे चले जाते हैं, तो उन्हें भौतिक वस्तुओं की विषय में ज्यादा विस्तार नहीं बताना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट से कहाँ पर जाना चाहिए? भगवान के विषय में बताना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के कारण है, भगवान की शक्ति है। तो फिर डायरेक्ट से भगवान के विषय में जो ज्ञानी है उनको भगवान के विषय में बताया, श्रुति का निर्देश में, यानी कि शास्त्र क्या कहता है कि जो भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके पास बुद्धि का विकास हो जाता है, तो उसको बाकी कार्यों को छोड़कर भगवान के विषय में बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी दुर्भाग्य के बारे में बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया का के बाह्य सौंदर्य पर मुग्ध रहते हैं, वे ये नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर है। अब क्योंकि भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद वास्तव में ये सारे ज्ञान जो अभी हमने पढ़े कि साइंस हो या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, उसका पर्यवसन क्या है? भगवान को समझना। लेकिन जीव इतना दुर्भाग्यशाली है कि जब वो इन भौतिक वस्तुओं के विषय में पढ़ता है तो बाह्य सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है, वो भगवान की जो बहिरंगा माया शक्ति है ना, उसी के अंदर में आ जाता है और वो समझता है कि ये भौतिक वस्तुएं सब कुछ है। तो भगवान के विषय में भगवान को समझ नहीं पाता है। इस तरह वास्तव में क्या है, शास्त्र क्या कहता है, इस संसार में जो कुछ भी है वो रिफ्लेक्शन है, इस संसार में आनंद नहीं है, इस संसार में रियलिटी नहीं है, वो तो वास्तविकता, जो वास्तविक आनंद है वो कब कहाँ पर है? ऊपर है, भगवान के लोक में। और ये सब क्या है? इस उसी आनंद का प्रतिबिंब है। तो जीव इतना मूर्ख हो जाता है कि इस प्रतिबिंब में ही आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है और वास्तविक भगवान के विषय में नहीं सोचता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य पर मुग्ध रहते हैं, वे ये नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम प्रणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। अब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान की माया है, और विष्णु माया का क्या मतलब होता है? इंद्रिय भोग। भले ही जीव कितना ही सोचता हो कि इस समस्त ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करके मैं इंद्रिय दृष्टि करूंगा, इंद्रिय को संतुष्ट करूंगा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करूंगा, लेकिन अगर वो इंद्रिय तृप्ति में आनंद प्राप्त करता है तो वो बहुत ही क्षणिक होता है, अगले ही क्षण में वो आनंद दुख का रूप धारण कर लेता है। जब वो प्राप्त हो जाती है चीज तो भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाता, दुख का कारण होता है, और जब नहीं प्राप्त होती है तो भी दुख का कारण होता है। यानी इंद्रिय भोग की इच्छा से लेकर उसकी प्राप्ति के बाद तक केवल दुख ही दुख आता है। तो जो लोग विष्णु माया के चुंगल में आ जाते हैं, वे ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग इंद्रिय भोग में करते हैं। ये जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो क्या करते हैं, वो सदुपयोग नहीं होता है, वो दुरुपयोग होता है वास्तव में, इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो भौतिक ज्ञान बहुत ज्यादा, वास्तव में भौतिक ज्ञान भी अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसका पर्यवसन कहाँ पर होता है, भगवान की भक्ति पर होता है, लेकिन वो यहीं पर इंद्रिय भोग पर ही अटक कर रह जाते हैं। तो श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है। यहाँ पर नारद मुनि ने जो बताया है उसके विषय में श्री गोपाल जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है दिख रहा है वो भगवान की शक्ति का प्राकट्य है, ये सब भगवान की शक्ति के कारण है। तो जीव को इतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि वो इस भौतिक वस्तुओं में ही ना अटक के रह जाए, बल्कि वो वास्तविक जो आधार है, जो स्रोत है यानी भगवान, उनके विषय में जानकर उनको सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की। अब इस संसार में इस भगवान ने संसार को सृजन किया और सृजन करने के बाद जो कुछ भी है क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, मतलब जीव जो कार्य कर रहा है उनको क्रिया कहते हैं, और उस कार्य का जो उसको फल मिल रहा है उसको प्रतिक्रिया कह रहे हैं, है ना। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म और कर्मों के फल है, तो वो कैसे हो रहे हैं, वो भगवान की योजना से हो रहे हैं, वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हो रहे हैं, उनकी शक्ति पर आधारित है, जो कुछ भी संसार में है वो उन्हीं की शक्ति पर टिका हुआ है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाता है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। संसार में जो कुछ भी है भगवान की शक्ति का मुजाहरा है, भगवान के कारण ही उत्पन्न हुआ है, भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, और प्रलय होगी तो भगवान के अंदर ये सब भगवान के अंदर ही लीन हो जाएगा, अतएव उसके अतिरिक्त यानी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, बल्कि वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो सब कृष्ण की शक्ति पर टिका हुआ है, किंतु वे सदैव उनसे भिन्न है। ये बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है, भले ही संसार के कण कण में भगवान है लेकिन भगवान की एक अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, तो उसके विषय में बात जब हम करते हैं, भगवान को जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम भौतिक सृष्टि को नहीं समझ सकते हैं। भगवान का स्वरूप समझना होगा कि वो भगवान है जिसके कारण ये हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई ना कोई, अच्छा है ना, कोई लोग बोलते हैं कि हम भी उस सत्संग में जाते हैं तो यही बताते हैं कि भगवान है, भगवान के द्वारा से ही आता है, लेकिन वो भगवान कौन है यदि वो आपको नहीं बताया जा रहा है तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। भगवान के बारे में, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं के विषय में जब तक आप नहीं सुनते हो तो भले कितना ही सुन लो आपकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि उन्नति क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। यदि आप भगवान को जानोगे नहीं, भगवान को समझोगे नहीं, भगवान के स्वरूप को नहीं जानोगे तो फिर भगवान से प्रेम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बोला विग्रह पूजा मना करते हैं कि भाई हम विग्रह जो है वो भगवान नहीं है, तो वो हर एक चीज यदि आपको भगवान दिखा रहे हैं, कांका में भगवान दिखा रहे हैं, तो वो उस विग्रह में उनको भगवान क्यों नहीं दिख रहा है जो मंदिर में स्थापित की जाती है? क्या वो कोई साधारण पत्थर उनको कैसे दिखाई देता है जिसकी प्राण प्रतीक्षा होती है? तो वास्तव में जीव को भगवान के विषय में समझने के लिए भगवान के स्वरूप को जानना होगा, और जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता वो कभी भी आपको भगवान का प्रेम नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए श्री नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो भगवान के कारण है, भगवान के अंदर ही लीन हो जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान सदैव हमसे भिन्न है, भगवान का एक अलग अस्तित्व है। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया अद्वितीय बन जाती है। अब पहले तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि वास्तव में ये भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं वो इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा भौतिक इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करते हैं और इसी में अटक के रह जाते हैं, और वो वास्तव में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका पूरा ज्ञान जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि यदि वो वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो सब व्यर्थ है। लेकिन जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, यानी कि आपके पास जो भी ज्ञान है, चाहे आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, कोई भी सेवा यदि आप अच्छी कर सकते हो, भले आप अच्छे पेंटर हो, भले आप अच्छे सिंगर हो, भले आप अच्छे कुक हो, भले आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, यदि आप अपनी अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो भगवान की सेवा के लिए, तो सारी प्रक्रिया अद्वितीय बन जाती है। फिर आप जो भी कार्य कर रहे हो, भले वो कोई भी भौतिक कार्य है, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो अद्वितीय आध्यात्मिक बन जाता है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा आदि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अब भौतिक जितने भी क्रियाएं थी वो भी भगवान का ही प्राकट्य है, लेकिन भगवान उनसे अलग है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान से रिलेटेड जो चीजें होती है, यानी भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान की महिमा, वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान ही है, वो भगवान से अभिन्न है। अतएव समस्त मनुष्यों, समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्णतया तथा एकांतिक रूप से भगवान की सेवा के लिए किया जाए। यानी कि जितना भी संसार का ज्ञान है, चाहे वो साइंस हो, फिलोसफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, जो कुछ भी, जो भी ज्ञान के अलग अलग भिन्न शाखाएं हैं, उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग केवल भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? ऋषियों और मुनियों ने ये बताया है कि वास्तविक जीव को बुद्धि किसने दी है? बुद्धेर बुद्धिमतामस्मि 7.10 में भगवान ने बताया, जितनी भी बुद्धि है बुद्धिमानों के पास, वो मैंने दी हुई है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा तुम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो, तो उसे भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। और यही ऋषि मुनियों ने बताया है कि वास्तविक आपके ज्ञान का सदुपयोग यही होता है जब आप भगवान की सेवा में अपने ज्ञान को यूज करते हो। इसके अतिरिक्त नारद मुनि कहते हैं, कला यानी आपके अंदर कोई भी कला है, साहित्य यानी आप जो भी शास्त्र लिख रहे हो, पद्य यानी कि जो आप पोएट्री बताते हो, शायरी जो आती है, चित्रकला अर्थात जो पेंटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उन सब का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। यानी कि जो भी आपके अंदर फन है, जो भी आपके अंदर कला है, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, उसका सदुपयोग क्या होता है कि उसको भगवान के लिए यूज किया जाए। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्यतः कामुक विषयों के लेख में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। अभी संसार में जितने भी ज्यादा बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े जो भी शायर हैं, जो पोइट्री करते हैं, और जो भी मतलब जिनके पास इतनी बुद्धि है कि वो लिख सकते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी इस बुद्धि को, अपने इस कला को यूज करते हैं किसी कामुक विषयों के लिखने में, यानी भौतिक काम, जैसे ऐसी शायरी करते हैं, ऐसे नॉवेल्स लिखते हैं, ऐसे मैगजीन्स में ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं, जिससे जीव की भौतिक काम इच्छा और भी उत्तेजित होती है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तविक बुद्धि आपको ये कार्य करने की जो है वो भगवान ने प्रदान की है, तो फिर इन सब बुद्धि का इस्तेमाल, यूज किसने होना चाहिए? भगवान की सेवा में लग जाए, तो भगवान की लीलाओं के विषय में उनको वर्णन करना चाहिए, इतना ही भाव से जो ये कामुक विषयों के विषय में बता रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से जो भौतिक इंद्र तृप्ति के विषय में बता रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, बल्कि भगवान के विषय में भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। अभी ऐसे दो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी, कि वाल्मीकि एक महान कवि थे, बहुत वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है वो शायराना तरीके से लिखी है, पोएट्री के तरीके से, तो महान कवि थे। उसी प्रकार वेद व्यास महान लेखक थे, वो राइटर थे, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर थे। अभी इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे पोएटर्स आए होंगे, बहुत सारे राइटर्स आए होंगे, लेकिन अब ये जो शास्त्र है हम जो पढ़ रहे हैं 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिखे हैं, तो और वाल्मीकि जी ने रामायण तो उससे भी पहले लिखी है, तो ये इतने सारे शास्त्र जो है वो उन्होंने लिखे हैं, और अब तक हम 5000 साल के बाद भी हम इतनी उत्तेजना से, इतनी ही उत्साह के साथ उसको पढ़ रहे हैं और उनके नाम को याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो वो अमर हो गए। इसके अतिरिक्त भी 5000 साल पहले बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए होंगे, पोइटर्स हुए होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं याद रखता। ज्यादा से ज्यादा 100 साल 50 साल के बाद फिर नाम खत्म हो जाता है उनका, लेकिन जब तक संसार में जीव होगा तब तक वेद व्यास जी का, वाल्मीकि जी का, और जिन्होंने भगवान के विषय में बात, जो भगवान के परम भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, श्रील प्रभुपाल जी इस तरह के, और उनके जितने भी अनुयायी जो ये कार्य कर रहे हैं, वो सदैव के लिए अमर हो जाते हैं। वास्तव में ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग क्या है कि उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, उसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए। इंद्र तृप्ति के कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। मॉडर्न साइंस जो कि भौतिक वस्तुओं के विषय में इतनी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और जो फिलोसफी बता रहे हैं, वो केवल अगर उस फिलोसफी से इंद्र तृप्ति के विषय में, कोरे सिद्धांत के विषय में बताया जा रहा है, तो श्री प्रभुपाल जी कहते हैं उससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। फिलोसफी है या मॉडर्न साइंस है, विज्ञान है, उसको भगवान की महिमा स्थापित करने के लिए ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। उन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अब जो वास्तव में आज का मनुष्य जो बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं ना, वो चाहते हैं कि ठीक है हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमें वो साइंस के द्वारा, के मॉडर्न साइंस के द्वारा, उसके बुनियाद पर भगवान को प्रूफ करके बताओ। यानी कि अगर कोई इस तरह से मॉडर्न, ये भौतिक जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनको मॉडर्न साइंस की बेस पर यदि बताएंगे ना, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं जल्दी, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा बोलते हैं कि भाई इस तरह से विज्ञान के विषय में हमें बताओगे तो हम समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान विज्ञान वेत्ता का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। तो जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भौतिक ज्ञान, ये साइंस वगैरह जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ ली है, तो फिर उनका ये कर्तव्य है कि वो ऐसा प्रयास करें कि इस वैज्ञानिक तरीके से भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपदेश परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जा सकता है। ये फिलोसफी भी बताई जा सकती है कि परम सत्य ही जिनके द्वारा से ये सब कुछ संसार में आया है, प्रकट हुआ है, ये सब अगर कोई फिलोसोफर ये सब चीजें बताएंगे और साइंटिस्ट ये सारी चीजें बताएंगे, तो जो भौतिक संसार में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे। इसलिए जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनका ये कर्तव्य है कि फिलोसफी और साइंस के आधार पर भगवान को सिद्ध करें। इसी प्रकार ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की ही सेवा में किया जाना चाहिए। श्री प्रभुपाल जी बोलते हैं जितने भी ज्ञान, अगर कोई ज्ञानी होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो सारी चीजों को भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि वह सारा ज्ञान अज्ञान है, अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में ना लगाया जाए। तो जीव, भले आज हम देखते हैं कि जीव कितना ज्ञान प्राप्त करता है, दूर दूर तक स्टडी करता है, बचपन में बच्चा अभी 1.5 साल का होता नहीं है, उसको एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है और पूरी जिंदगी पढ़ता रहता है, कोई सीए करता है, कोई आईआईटी करता है, इतनी बड़ी डिग्रीज होती है, लेकिन हमने भगवान के विषय में पता नहीं है। तो शास्त्र कहता है वो सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान जैसे तुम्हारा जीवन का जीवों का वास्तविक कल्याण होगा उसके विषय में तो जाना ही नहीं। तो ये भौतिक विज्ञान, भौतिक वस्तुओं के विषय में जान लेना और भौतिक इंद्रिय तृप्ति के तरीकों को, जो भी इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं, उनको और भी अच्छे तरीके से करके उनमें फंसने के लिए यदि आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है तो फिर आपने अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि उसका मकसद ये नहीं है। वास्तव में जीव इस संसार में आया है तो उसे ये जानना है कि मेरा वास्तविक कल्याण भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करके भगवान के दाम में जाकर समस्त कष्टों से मुक्त होने के लिए हुआ, इसी संसार में बारम्बार जन्म लेने के लिए नहीं हुआ है। इसी संसार में इंद्र तृप्ति की अभिलाषा, जिसके कारण केवल दुख ही प्राप्त होगा, उसके लिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ है, बल्कि उस मनुष्य जन्म का देह और भी अधिक आध्यात्मिक लोक, जहाँ पर कोई भी दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई भौतिक रोग नहीं, उस जगह को प्राप्त करने के लिए हुआ। तो यदि ये सब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसी श्लोक रूपा जी आगे बता रहे हैं कि उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ हमारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन या भगवान की महिमा का गायन है। तो यदि कोई एजुकेटेड लोग होते हैं, वो यदि भगवान की सेवा में अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं, तो वास्तविक उसके जो उसने किया है पूरे जीवन में जो प्राप्त किया है, उसका वास्तविक सदुपयोग यही है कि भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान की महिमाओं का वर्णन करने के लिए उस ज्ञान को इस्तेमाल कर रहा है। यदि वो ये कर रहा है तो वास्तव में वो क्या कर रहा है, हरि कीर्तन कर रहा है या भगवान की महिमा का गायन कर रहा है, और इसी से जीव का कल्याण होने वाला है। बाकी भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए अपने ज्ञान को जो लोग यूज करते हैं, उससे उनका कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को बताए हैं, इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्यवा, कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति तपस्या करता है, जो भी तपस्या कर रहा है, श्रुतस्य का मतलब होता है वेदों को जो पढ़ता है। जीव, बहुत सारे जीव हैं जो तपस्या कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, विष्टस्य अर्थात यज्ञ कर रहे हैं, सूक्तस्य अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और बुद्धि है ना, सूक्तस्य च बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, दत्तयो यानी कि दान दे रहे हैं, अविच्युत यानी जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर अर्थ, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, अगर उसका अर्थ क्या है, उत्तम श्लोक गुणान, अगर वो उत्तम श्लोक यानी भगवान जिसकी जिसकी सराहना उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है, तो यदि ऐसे भगवान के गुणानुवर्णनम, भगवान के गुणों के लिए अपने इस ज्ञान को वो यूज कर रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है अविच्छतोर्थ यानी कि वो बिल्कुल अशुभ प्रयोजन है, वास्तविक उद्देश्य। तो ये किसने कहा है, कवि भी निरूपित, जो कवि लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके उसको वास्तविक ढंग से यूज करके भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो कवि भी हैं, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि आप भले ही तपस्या करते हो, वेद अध्ययन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उस यदि उसके द्वारा आप भगवान की दिव्य लीलाओं में जाकर उनको समझने का प्रयास कर रहे हो, उनको बताने का प्रयास कर रहे हो, भगवान की लीलाओं का विस्तार कर रहे हो, तभी आपके ज्ञान का सही सदुपयोग है। भौतिक वस्तुओं के विषय में यदि आप कितना भी बता दोगे तो उससे ना जीव का कल्याण होगा, ना बताने से आपका कल्याण होगा। तो आज वेद व्यास जी नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि आप क्योंकि भगवान के शक्ति आवेश अवतार हो, आपके अंदर कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं, आप अमोघ अदृक हो, आपका संसार में जन्म ही इसलिए हुआ है कि जीवों का कल्याण हो, तो फिर जीवों का कल्याण तो वास्तव में भगवान जो उत्तम श्लोक हैं, जिन उनकी लीलाओं का श्रवण करने से होगा, तो फिर आपको दूसरी चीजें बताने के बदले में बल्कि क्या बताना चाहिए, भगवान की लीलाओं के विषय में बताना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुणों के विषय में बताना चाहिए, तो इसी से जीवों का वास्तविक कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। हरे कृष्ण।